अब आगे से टॉपिक जो शुरू हो रहा है उसका आप थीम लिख लीजिए, अकीदा आखिरत। अगर आप सबक को पीछे से एक नज़र डालें तो अभी तक हमने तौहीद और रिसालत की है, यानी पहले अल्लाह सुबहाना तला का मुकाम था, अब नबी सल्लम का गुजरा, और आज 29 से अब आगे चंद आयात में आखिरत की बात है। याद रखिए कि मक्की सूरतों में अकीदे की मुख्तलिफ अकसाम साथ साथ चलती जाएंगी, और अब हम मुसलसल सूरतें पढ़ते जाएंगे तकरीबन 26-27 पारे तक। तो दुआ कीजिए कि इसके अंदर हमारा अकीदा पुख्ता हो जाए और हम अल्लाह का हक भी उसको दे सकें, नबी का भी, और अपने आखिरत के अकीदे को पुख्ता करें। 29 एक सवाल से शुरू होती है, व यकूलू नमता हाजल वादु इन कुंतुम सादिकीन, और वो पूछते हैं कि कब पूरा होगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। कौन सा वादा, क़यामत का वादा या अज़ाब का वादा? आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बयान हुआ। अभी तक के सबक में अल्लाह ताला की तौहीद का तस्करा था, फिर उसके बाद रिसालत थी, अब अगली दो आयात में क़यामत का तस्करा। मक्की सूरतों में ये चीज़ आपको हमें आम दिखेगी कि अल्लाह ताला ने अकीदे पर बहुत बात की है, और चूँकि अब यहाँ से आगे मुसलसल तकरीबन 26 पारे तक हम मक्की सूरतें पढ़ते रहेंगे, तो इस दौरान अपने अकीदे को पुख्ता करने की ज़रूरत है। और यही अकीदा पुख्ता होता है तो इंसान कुर्बानियाँ करने के लिए भी तैयार होता है और अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात के बावजूद जमा रहता है। यहाँ क़यामत का उनका तस्करा, वयकुलूना, और वो पूछते हैं मता हासल वादू, कब होगा ये वादा पूरा। बेयकीनी भी थी और मजाक उड़ाना भी था, इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि तैयारी करें, बल्कि इसलिए था कि अगर ना आ सका तो हम आपका मजाक उड़ा सकें कि खामखा वादे तो कर लेते हैं लेकिन फिर वादे पूरे तो होते कोई भी नहीं, और जो कहा था वो तो हुआ ही नहीं। इस तरह का स्टाइल पेश किया जाता है। तो कहा गया कि इनको कह दो कि तुम फिक्र ना करो, अगर तुम्हारे साथ कोई वादा किया है, कोई कमिटमेंट की है, कोई अपॉइंटमेंट तुम्हें दी है तो वो पूरी होगी, तो फिक्र ना करो। जब वो वक्त आ जाएगा, जब सारा मामला सच्चा होगा, तो फिर होगा क्या, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी अल्लाह के नबी का मजाक उड़ा रहे थे, तो कहा कुल लकुम मियाद, है तुम्हारे लिए एक मियाद, एक वक्त मुकर्रर है, यौमिन, वो दिन, ला तस्ताखिरून अन्हु, जिससे वो एक घड़ी भर भी पीछे नहीं हट सकेंगे। तस्ताखिरून अखरा से है, अखरा मुअख्खर करना उर्दू में भी है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो पोस्टपोन का मानी आ जाएगा, पोस्टपोन कर नहीं सकोगे उसको तुम एक घड़ी के लिए। वला तस्तकदीमून, और ना आगे बढ़ सकोगे, यानी एक वक्त ऐसा है कि ना तुम उससे पहले मिल सकते हो, जितना मर्जी शोर मचा लो वो वक्त अपने पे रहेगी। याद रखिए कि ऐसे सवाल उनकी बेयकीनी को और उनके आखिरत के अकीदे को पुख्ता ना होने का जवाब देते हैं। और जब तक हमें खुद को भी क़यामत का और अपने मरने का यकीन नहीं आएगा, हम भी ऐसे सवाल पूछते रहेंगे। यहाँ आप नोट करें कि काफिर सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा है, मोमिन क्या करता है, पीछे सुन चुके हैं, इंफॉर्मेशन पे अमल करता है। बार बार कहना क़यामत कब आएगी कब आएगी, इससे क्या होता है, मोमिन क्या है? अल्लाह के नबी सल्लम से जब एक साहबी ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो आपने कहा कि ये बताओ कि तुमने उसके लिए तैयार क्या कर रखा है, तो गोया के सवाल ना पूछो, बस काम शुरू कर दो। कौन कब आएगा, मेहमान कब आएंगे, क्या होगा, भाई आपने तैयार क्या किया उनके लिए, वो करके बैठ जाए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। उसके बाद आयत नंबर 31 में कुरान की बात है, और ये चारों मजमून मक्की सूरतों की शान है कि इससे साथ साथ आते हैं। वकाल लजीना कफरू, और कहा काफिरों ने, लन नोमिन बि हाज़ल कुरआनी, हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे इस कुरान पर, और वला बिल्लज़ी बैना यदैही, और उस कुरान पर भी जो इससे पहले है। थोड़ा सा समझिएगा, यह आयत एक लिहाज से अहम है कि इसमें लफ्ज़ कुरान का इत्तलाक तौरात पर भी आया है। अगर आप देखें बिहाज़ल कुरान, इसके नीचे लिख लीजिए कुरान पाक जो मेरे और आपके हाथ में, और बिल्लज़ी बैना यदई मुराद तौरात है, लेकिन लफ्ज़ कुरान ही के लिए आई है। तो ये भी बात आपको पीछे जिक्र किया गया था कि बार बार पढ़ने को कुरान कहते हैं, तो सूरत कसस की आयत नंबर 48 को सामने अगर आप रखें, जिसमें कुफार का ये कॉल था कि उन्होंने कुरान और तौरात को सहरानी तज़ाहरा कहा था, कि ये तो दो जादू हैं जो सर चढ़कर बोलते हैं। तो मतलब क्या था कि तौरात पढ़ने और कुरान सुनने के भी जो अंदाज़ है उसका दिल पे असर होता है, और इनको जोड़कर आपने ये कुछ सारा जमा कर लिया। तो कुरान पाक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौरात में पेशनगोइयाँ मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान तौरात की तस्दीक करता है, बड़ी बारीक बात है। तौरात खोलेंगे ना तो उसमें कुरान का भी जिक्र है اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو تورات کی ویریفیکیشن ہے جس کو آپ تصدیق کہتے ہیں. تو گویا کہ چند لوگوں نے یہ باتیں بنا لی تھی کہ یہ سب اندر سے ایک ہی ہیں, بس نام کچھ بدلے ہوئے ہیں. تو یہاں قرآن اور ان دونوں کی بات کر کے بتا دیا کہ تم جس چیز کا انکار کرتے ہو یہ قرآن تم نہیں مان لاتے تو نہ لاؤ. کل انہوں نے بھی تو تورات پر ایمان نہیں لائے تھے, تو آج تم نہ لاؤ, یہ کون سی بڑی بات ہے. پھر ایک بیسک رول یاد رکھیے کہ قرآن پاک نے تورات کے جن احکامات کی نفی نہیں کی, یعنی وہ آج بھی لاگو ہیں, تو وہ احکامات اس شریعت میں جو ہیں وہ قرآن میں آج بھی موجود ہیں. مثلا دیکھیے مرتد کا قتل, جیسے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان ہونے سے چھوڑتا ہے دین کو تو اس کی سزا قتل ہے نا, تورات اور انجیل میں بھی یہی تھی. پھر اسی طرح رجم تورات کے احکامات میں تھا, آج قرآن میں بھی موجود ہے. تو اسلام سارا پورے کا پورا نلیفائی کرنے نہیں آیا پچھلے دین کو, غلط چیزوں کو نکال دیا, چین چیزوں کو نکال کے اصل چیزیں موجود رکھی. اس لیے کئی ایسی چیزیں آتی ہیں, مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے, لیکن آپ نے بھی کیا, لوگوں کے لیے آپ نے رجم کیا اور خلفائے راشدین میں بھی ہوا. کچھ لوگوں نے اس چیز کو بھی دلیل بنا کر اسلام پر کیچڑ اچھالا تھا, جنہوں نے کہا کہ اچھا جی قرآن میں تو رجم کا حکم نہیں, ہاں تورات میں ہے, تو یہ مسلمان اندر کھاتے یہ یہودی ہیں. بات سمجھ رہے, باطل لوگوں کو کوئی نہ کوئی وجہ مل ہی جاتی ہے غلط بات کہنے کی, اور جو نقص ڈھونڈے گا اس کو ملیں گے. سچی جو بات ہے, جو عیب لگائے گا اس کو عیب بھی مل جائیں گے. تو یہ ساری باتیں کر کے آج بھی خوارج, آپ کو پتہ ہے ایک مذہب ایسا گزرا ہے, تو سوائے خوارج کے اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام مذاہب جو ہے نا وہ اس پہ متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے, سنسار ہے, جبکہ قرآن میں نہیں. تو وہ کدھر ہے؟ تورات میں. بات ویسے تورات میں ہے تو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ اسلام نے اس کو نلیفائی نہیں کیا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کی صفت کیا ہے, المہیمن, نگہبان ہے, چوکی داری کرتی ہے پچھلی کتابوں کے احکامات کو. جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک صفحہ تھا تورات کا جو ان کے اہل کتاب میں سے کسی نے دیا, آپ اس کو لے کر آئے, پڑھ کر سنانا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے کہ آج تک تم تورات کے بارے میں حیرت میں ہو, ابھی بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تورات ٹھیک تھی. والذی نفسی بیدیہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لقد جئتکم بہ بیضاء نقیۃ لا تسلوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا بہ او بباطل فتصدقوا بہ والذی نفسی بیدیہ لو ان کان موسیٰ حیا ما وصیہ الا ان یتبعنی. اے خطاب کے بیٹے کیا تم لوگ اس تورات کے بارے میں ابھی بھی حیرت میں ہو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں تمہارے پاس یہ قرآن یعنی روشن اور پاکیزہ اور ہر آمیزش سے پاک لے کر آیا ہوں, ان اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھو. یہ نہ سوچیں کہ اچھا اب ہم تورات سے جا کے پوچھ لیں, مت پوچھو, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں حق بتائیں اور تم اس کو جھٹلا دو یا باطل خبر دے اور تم اس کی تصدیق کرو, یعنی تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے, کوئی کسوٹی نہیں ہے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو کلیئر بات ہے کہ آج میں اور آپ تورات سے احکامات نہیں لے سکتے, کیونکہ جو صحیح احکامات تھے جن کو اسلام نے ویریفائی کیا وہ خود بہت قرآن میں موجود ہیں. اب یہاں سے قیامت کی مزید بات, وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. اب آپ بھی ساری پچھلی باتوں کو ذہن میں رکھیں, اللہ کی بڑائی کو ذہن میں رکھیں, اس کی قدرت کو رکھیں, اپنی خطاؤں کو, اپنی زندگی کے معاملات کو رکھیں, اور اس آیت کو سوچیں کہ جب اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے. وَلَوْ تَرَىٰ, اور اگر آپ دیکھیں, جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے, دیکھیے خود نہیں کھڑے ہوں گے, کیے جائیں گے, موقوفون, موقوف کی جمع. آپ لوگوں نے عرب ملکوں میں سفر کیا ہو تو قف کا لفظ لکھا ہوتا ہے, قف, سٹاپ سائن. اسی طرح موقوف, وقف کا لفظ سنا ہوگا, وقوف عرفہ تو نام سنا ہی ہوگا, کھڑے ہونے کے معنوں میں, یعنی سٹینڈ اپ, سٹل سٹینڈ کا معنی ہے, کھڑے ہو جاؤ, اندہ رب بھی ہے میں اپنے رب کے پاس. یرجیو باد ہم الی باد القول, اور وہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے. بات کے نیچے لکھ لیجیے الزام, وہ اپنی گمراہی کا اور اپنے بھٹکنے کا الزام دوسرے کو دیں گے. کیا کہیں گے؟ اب ان کو آپ انورٹڈ کامرس میں کر لیجئے تو بات زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. یقول الذین استضعفوا, کہیں گے وہ لوگ جو کہ کمزور تھے, للذين استكبروا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا جو بڑے بنے ہوئے تھے لولا انتم لکنا مومنین اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم تو ضرور مومن ہوتے دیکھیں آپ کو اس میں ان کی حسرت دکھ رہی ہے تم نے ہمیں بہکایا تم ہمارے دوست نہ ہوتے نا تو ہم بھی پہنچ جاتے کہیں جگہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر ہدایت کے سفر کو چھوڑ دیتے ہیں تو کمزور بنے ہوئے بڑوں کو کہیں گے اب یہ کمزور کس لحاظ سے کمزور تھے بڑے بڑے سرداروں اور غلاموں کو بھی سامنے رکھ لیجئے قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے عوام الناس کو اسلام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوششیں کرتے تھے قیامت کے دن لوگ ان کو کوسیں گے اسی طرح ہر دور کے بڑے وہ میڈیا بھی ہو سکتا ہے وہ بڑے لوگ بھی ہیں جو اسلام پہ اور مسلمانوں پہ باتیں کرتے ہیں اور وہ خود مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے رویوں سے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ اسلام سے دور ہو جاؤ خیر جواب کیا آئے گا قال الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا للذین استضعفوا ان کو جو کمزور تھے کیا کہیں گے یہاں قومہ ڈال لیجئے یہ ان بڑوں کا قول ہے انحن صددناکم عن الہدیٰ کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت سے بعد اس جاکم جب کہ آ گئی وہ تمہارے پاس اس کے بعد بل کنتم مجرمین بلکہ تم خود ہی مجرم ہو دیکھیے کتنی اس میں حسرت ہے نا اور یہاں آپ کو ہدایت کا فلسفہ پھر سمجھ آ رہا ہے جو پیچھے سمجھا ہم نے اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ ہدایت نہیں ملتی جو کمزور لوگ تھے یہ بڑے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے اور یہ چونکہ ایٹیچیوڈ پرابلم کا شکار تھے تو لہٰذا جو یہ کرتے تھے چھوٹے لوگ بھی یہی کرتے تھے ان کا خیال تھا کل یہ ہماری مدد کریں گے کیونکہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں لیکن یہ تو بیچارے کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کب روکا تھا کیونکہ دیکھیے جس طرح ہم کسی کو زبردستی ہدایت دے نہیں سکتے نا اسی طرح ہم کسی کو زبردستی گمراہی نہیں دے سکتے آپ پڑھ چکے اس کی دلیل پیچھے میں نے پہلے بھی پوچھی تھی ایک بار آپ سے سورت مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اے ایمان والو اپنی فکر کرو کوئی تمہیں بہکا نہیں سکتا جب تک کہ تم خود ہدایت پہ رہو تو لہٰذا کسی کا کہنا میرے شوہر میری ہدایت کے راستے کی رکاوٹ ہیں کسی کے بچے کسی کے سسرال تو یہ آپ کے خود خود ہدایت سے دور کی بات ہے طلب نہیں ہے آپ ہدایت خریدنا چاہتے ہیں نفع اور نقصان کے سودوں کے ساتھ ہدایت لینا چاہتے ہیں جبکہ ہدایت تو طلب کے ساتھ ملتی ہے طلب پیدا کریں گے تو جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ایسے تمام لوگوں کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم فکر پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم ان چیزوں کو کیسے لے کے جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ کسی کو نہ زبردستی ہدایت دی جا سکتی ہے نہ کسی کو گمراہی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ اپنے بچوں کا بچپن یاد کریں چھوٹا بچہ ہے نا کھانا نہیں کھاتا تو ماں زبردستی اس کو پکڑتی ہے میں نے دیکھا ماں بچوں کے دونوں ٹانگیں بھی اپنی بٹانگوں میں دبا لیتی ہیں ہاتھ بھی پکڑ کے اس کے منہ میں ڈالتی ہیں کارن فلیکس کھا دو اس کے منہ میں جائیں بعض ماں ایسی بھی سختی کرتی کہ بچے چونکہ کھاتے نہیں وہ ان کا ناک بند کر کے منہ میں چمچ بھرتی ہیں وہ سانس منہ سے لیتے ہیں تو کھانا اندر جاتا ہے تڑپتی ہے نا اب چھوٹے بچے ہیں آپ اس طرح زبردستی کر کے ان کا پیٹ کا کھانا ڈال دیا کیا بڑے ہوئے بچوں کو آپ اس طرح کھینچ کھون کے ہدایت پہ ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے اب یہ بڑے بچوں کو تو اب کھانا نہیں کھلا سکتے ایسے آپ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنیں گے بچپن میں بچے سب کچھ کھاتے تھے بڑے ہو کے چھوڑ گئے کیونکہ تب آپ اس کو ٹانگوں میں لپیٹ کے کھلا دیتی تھی اب وہ بڑے ہو گئے اب تو آپ ہانف جائیں گی کانپ جائیں گی تو ایک پیٹ کا کھانا نہیں آپ کھلا سکتے ہدایت کس کو کھلائیں گے آپ تڑپ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں مچل سکتے ہیں رو سکتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے لیکن آپ کسی کے زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے ورنہ کیا ہوتا دنیا میں کوئی ایک شخص بھی بے ہدایتہ نہ ہوتا دلیل فَلَلَّكَ بَاخِيُ نَفْسَكَ عَلَىٰ سَارِهِمِ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا صرف اللہ کے نبی کی تڑپ ہی کافی تھی ساری انسانیت کے ہدایت پہ ہونے کے لیے دوسری بات ہے ہم سب اپنے اوپر بھی لے کے سوچیں اب ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ تو سن ہی نہیں رہے ہوتے اس وقت لیکن آپ دیکھیے کہ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور تڑپ رہا ہے بعض ماؤں کو نانیوں کو دیکھا اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت دینا اب وہ مائیں نانیاں دعائیں کر گئیں نا ہمارے لیے اگر وہ ہمیں ہدایت دے دیتی تو ہم چلے جاتے دوستیں دوستوں کے لیے دعا کرتی ہیں تڑپتی ہیں تو ہدایت کسی کو زبردستی نہیں دیتے بڑا اچھا جوک ہوا ایسی کسی سے بات ہو رہی تھی تو جیسے لوگ اپنے کلچر میں بات کرتے ہیں نا تو پوچھا اچھا کچھ یہاں سے چاہیے انہوں نے کہا نہیں بس دعا کرو اور یہ کرو تو پاس اس شخص کی نا ماں بیٹھی تھی تو اس نے کہا کہ آواز آ رہی تھی جس کی سنی کہ یہ بھی دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دینا تو وہ جو شخص تھا جوک بھی بے شک کہنے لگا امی کہہ رہی ہیں کہ مجھے ہدایت بھی ملے نا میرے لیے ہدایت کی بھی دعا کرو تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ کی امی کہہ رہی ہیں تو پھر ہدایت نہیں ملیں گی جب آپ خود کہیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی ایک جوک بن گیا نا ماؤں کی دعائیں بھی تب لگتی ہیں جب آپ خود تڑپیں گے और एक छोटी सी बात बताऊं, बात लंबी ना हो जाए इस डर से छेड़ती नहीं हूं, लेकिन फिर बता दूं, हिदायत तब मिलती है जब आप पहले से ज़हनी तौर पर हिदायत को थामने के लिए तैयार हों। हम पहले से प्लान नहीं करते ना, तो जरा सा जिंदगी में झटका आता है ना, तो सबसे पहले हिदायत की चाबी गिरती है हाथ से। वो खुशी का झमका, वो गम का झटका, वो बीमारी का झटका, वो सफर का झटका, वो मौसम की तब्दीली का झटका, हिदायत आप कैसे फिसलेगी? पहले भी बताया था, हिदायत स्लिपरी है। आप कभी बाथरूम में सिंक पे रखा हुआ साबुन तसव्वुर में लाएं, समटाइम वो इतना स्लिपरी होता है, आप उठाते हैं वो यूं उछल के आपके हाथ से जाके वो टॉयलेट में गिर जाता है। हिदायत इससे बहुत ज्यादा स्लिपरी है। इसके लिए तो पूरा प्लान, प्रोटोकॉल, ये करना है, वो करना है, मौसम, वक्त, सफर, ये मेरी बीमारी, ये हट ना जाए। वरना आप देखिए, हम एक दिन इस क्लास में आके नहीं बैठ सकते। यहाँ तो हम बैठ रहे हैं ना, मैं जब सफर में होती हूँ, मैं इसका एक्सपीरियंस करती हूँ। जब भी मेरा कोई सफर डिजाइन होता है ना, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से कैलेंडर बनता है, उस कैलेंडर में सबसे पहले, बल्कि सफर शुरू होने से भी पहले, ये तो डेफिनेट होता है कि क्लासेस ना मुतासिर हो। कभी कभी जब हाथ में बात नहीं रहती तो होती है, लेकिन उस कैलेंडर में सबसे पहले क्लासेस के टाइम डालती हूँ, उस टाइम के जोन से उधर है, फिर वो लिख देती हूँ, फिर उस वक्त में कोई लेना नहीं, देना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, उसके आगे पीछे बाकी काम शुरू करो। इतना आसान हो जाता है, इट्स सिंपल। टाइम लिख ले, यहाँ इतने बजे तो वहां इतने होगा, यहाँ ये कर रहे थे तो वहां ये है, कोई एक्स्ट्रा चीजें वो लिख ले। उसके बाद जहां कोई आपसे कहे, कहना लेट मी, आई विल लुक एट माई कैलेंडर, देख ले। आपसे कौन मांगेगा आपकी क्लास का टाइम? आप तो इंगेज हैं। क्या किसी चीज पे सोल्ड का साइन लगा हो तो कोई उसको दोबारा फिर बेचता है और खरीदता है? और बेवकूफ है ना जो सोल्ड के साइन पे खड़ा हो जाए और दुकानदार को मजबूर करे। ये लोग हमसे हमारा सोल्ड टाइम क्यों ले लेते हैं? हम तो पहले से क्वाइट है, हम तो पहले से, वो कहते हैं ना कि मेरी उम्मीद ना रखना, आई एम इंगेज्ड, मेरी फिक्र क्यों करते हो, मैं तो इंगेज्ड हूं। तो ईमान वाला अपने आप को जब तक खुद नहीं बांधता, दूसरे तो उसको उचक के ले जाएंगे। और ये फिर हम बाद में नहा बहाने करते हैं कि हम तो इस्तकबरू लिल्लज़ीन, हम तो उनको देख रहे थे, उनको खुश कर रहे थे। जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा ना कि आई कैंट लिव विदाउट दिस कुरान, दिस इज माई ऑक्सीजन मास्क, दिस इज माई ब्लड प्रेशर मेंटेनर, दुनिया का कोई जालिम से जालिम और सॉफ्ट से सॉफ्ट शख्स जो मोहब्बत के नाम पर आपसे आपका ये कुरान नहीं छीन सकता, जिस दिन आपका कुरान आपसे छूटेगा, उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। या फिर आपका कोई गुनाह होगा जो पीछे हमने पढ़ लिया कि अल्लाह गुनाहों की वजह से नेकियों के मौके छीन लेता है। क्यामत के मैदान की हसरतें तो देखिए, ठीक ठीक चलते हुए लोग दुनिया में कई दफा हिदायत से उतर चुके होते हैं, लेकिन वो फिर मोड़ नहीं मिलता दोबारा जिंदगी में जहां से भटके थे। फिर या तो और उतनी गुमराही में भटक के पीछे पलटो, फिर जाओ जैसे पहले आगे गए थे गुमराही के रास्ते पे, अब पहले उतना और पीछे पलटो। फिर अल्लाह ऐसे थोड़ी एक आपको जंप लगा के आप इस रोड पे निकल गए और आपको आना इधर था। आप इमेजिन करें ना, यहां खड़े थे और आपको यूं जाना था, आप इधर चले गए गलती से, अब यहां गए तो आपको एहसास हुआ कि ये तो मेरी रोड गलत है, मुझे इधर जाना था। अब आपको यहां से एक जंप लगा के तो इधर नहीं को भेजेगा, आपको वापस कतरा कतरा करके वापस आना पड़ेगा। जिस तेजी से गुमराही में गए थे, उसी तेजी से गुमराही के रोड पे वापस है, उस मोड़ को ढूंढिए जहां पे आप बिखरे थे, फिर आप चलेंगे। तो कौन इतने रास्ते भटक के, वक्त किसके पास है, जिंदगी की गाड़ी कहाँ खड़ी हो जाए। कल एक किसी की डेथ की खबर पता चली, हमारे बहुत अच्छे साथियों में से अमेरिका में, तो उनकी बेटी की शादी हुई है, मैंने तो सुना नहीं कब हुई, कल अचानक उसके शौहर की मौत की खबर का ईमेल था, और लिखा हुआ था उस ईमेल में कि ही रिसेंटली मूव टू अमेरिका फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे सारी कहानी समझ हो गई कि पाकिस्तान शादी की होगी, फिर साल दो साल वहां रहे होंगे, मुझे कुछ नहीं पता, जब हम वहां रहते थे तो सब पता था, तो इस बीच के अरसे में डायरेक्ट नहीं पता। लेकिन अब उनके दामाद की डेथ की खबर आई है, कल दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह खैर हो, किस बेटी का हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर मेरे जिम्मे सब आ रहा था, उसने अमेरिका आने का वीजा जो किया होगा, या जैसे कितनी स्ट्रगल से वो बेचारा लड़का अमेरिका आया होगा, अगर ये वही बात है जो मेरी अजम्पशन है, अल्लाह करे कि मामला खैर का ही हो, लेकिन यह है कि वो अमेरिका 2 महीने के बाद कह रहे उसकी डेथ हो गई। कौन रोक सका मौत को? समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, और जिस रब को सामना करना है वो सामने खड़ा हो गया, आज मौत आई। हमारे प्लान कितने लंबे होते हैं, अभी पढ़ेंगे, अब हाउस जॉब करेंगे, उसके बाद हम क्लिनिक खोलेंगे, फिर हमें जॉब मिल जाएगी, फिर अपना हॉस्पिटल बना लेंगे, फिर ये, और इससे पहले मौत का फरिश्ता हमारा सर पकड़ने को आ जाता है। तो जिस रब की हर वक्त जरूरत है उसको नहीं छोड़ना, उसको छोड़ेंगे ना तो हाथ की रस्सी छुट गई कि ना इधर के ना उधर के लटके। जो लोगों ने गुमराही के पांव रखे हुए ना, वो फिर भी जमे हुए, वो नीचे हैं, सिक्योर है। आप और मैं हिदायत के सफर के बीच में आके लटके हुए हैं, सच्ची बात है, ना इधर के ना उधर के। ना हमें गुमराह लोग कबूल करेंगे, वो कहेंगे नहीं ये बड़ी दीन वाली हैं ये कुरान पढ़ती हैं, और ना हमें हिदायत वाले लोग कबूल करेंगे कि ये तो भटक गए इनको कहाँ छोड़े। तो पहले उसकी तैयारी करके रख लेना जिधर जरूर जाना है, यहाँ की तो सफर कैंसिल हो सकते हैं, तैयारियां कैंसिल हो सकती, क्या नहीं हो सकता, वहां की तो फिक्र करने की जरूरत है। और ये चीज समझने शैतान नहीं देता, इसलिए फिर इन चीजों पे इंसान को पीछे से पीछे लाता है। अब अगली आयतों में हम देखेंगे कि लोगों की मजबूरी क्या है, लेकिन आयत 33 पे टॉपिक पूरा हो रहा है। वकाल अल्लज़ीनस्तकबरू, इस पर कहेंगे वो लोग जो कमजोर थे इनसे जो बड़े हुए थे। अब नोट कीजिए, वो है नहीं बड़े, खुद बड़े बने हुए थे। क्या कहते थे, ये भी कॉमास में लगा लीजिए इसके इर्द गिर्द, बल मकरुल लैली वन नहार, बल्कि ये तो तुम्हारी दिन रात की साजिशें थी, ये तुम्हारे मकर थे जिनको देख देख कर हम हिदायत से पीछे हो गए। ये मकर हैं, दुनिया में माया जाल फैला हुआ है, इतनी बेगैरती, इतनी बेहयाई, इतना खराबियां पैदा करती हैं लोगों की कि जिसके पीछे फिर लोग अंधाधुंध जाते हैं। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या खाना है, किधर जीना है, वो कहते हैं जो लोग कर रहे हैं हम वही करेंगे। और आप देखिए कि ये जो मकर है, इस मकर को आप इस तरह भी तो समझ सकती हैं ना कि इस मकर के अंदर दीन से दूरी का मकर नहीं है। और आप बताइए कि यहां इस्तकबरू से मुराद कोई सरदार है, वो कौन से सरदार के जो तनी भी गर्दनों के साथ नहीं, इन लीड्स इन्फ्लुएंशियल लोग, लोगों का दिमाग खराब करने वाले। यानी किसी ने बस वही कहना चाहिए ना कि लोग इसीलिए करते हैं कि ऐसी चीजें सामने आती हैं। मुझे कल एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसने मेरा इतना खून जलाया कि मैंने उस पर जो बुरे से बुरे लफ्ज लिख सकती थी मैंने वो लिख के उनको, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि देखे हो क्या रहा है, कैसे कपड़े जिसमें वल्लाही कसम खाने को मैं कह सकती हूँ कि किसी मुसलमान मुल्क, किसी मुसलमान के डिजाइनर, वेब डिजाइनर किसी का वो कमाल नहीं हो सकता कि जिसको वाकई कि आप कह सकते हैं कि रुबारियतुन कासियतुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यामत के करीब ऐसे दो गिरोह आएंगे जिनको तुमने नहीं देखा, और उस ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहनकर नंगी होंगी। एक तो गोरे है ना, गोरे तो और तरह के बरहना होते हैं, वो तो मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकती जो तस्वीर थी, सिर्फ उसको देखकर जो हाउस बिल्ला भी कर सकती थी, और उसके बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया। 4 लाख का वो जोड़ा था, और जिन्होंने भेजा तो उन्होंने मुझे तो इसीलिए भेजा था ना जो मैं कर रही हूं इस वक्त, कोई मुझे तो नहीं लेना था अल्लाह ना करे। तो कहती कि हमने जिन्होंने भी ये भेजा जिसके, उन्होंने कहा इसके नीचे कोई स्लिप भी है, आप समझ जाएंगे स्लिप क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि सॉरी नो स्लिप, यही तो इसकी कीमत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतनी बेगैरती तो शायद गोरे भी बिकिनीस पहन के नहीं करते जो। और कहा, मैंने कहा ये आपको मुसीबत मिली कहां से, कहती फेसबुक पे लोगों ने, डिजाइनर्स ने अपने नाम डाल डाल के और रजिस्टर करके बनाए मैं ये चीजें। कौन लेगा, वल्लाही बल मकरुल लैली वन नहार, रात से मेरे दिल पे बोझ है। मुसलमान नहीं, ये इंडियन नहीं है, ये गोरे नहीं है, ये नॉन मुस्लिम नहीं है, ये कोई नाइट क्लब्स नहीं है, ये पार्टी वेयर्स है। सबसे रोना ये है कि ये पार्टी वेयर 4 लाख रुपए का, और जाली जिसको आप कह सकते हैं कि जिस्म का एक अंग ना छुपे बगैर स्लिप के, कैन यू बिलीव, ये मकर नहीं है। और अंधे, मैंने कहा क्यों नहीं बैन करते हैं मुसलमान, हम कितने दीन वाले, नमाजें पढ़ने वाले, हम मस्जिदें से जाने वाले, हम सारा दिन लोगों को आके यहां पढ़ा के मुश्किलों में डालने वाले, क्या हम इनके मुंह नहीं तोड़ सकते, कोई गैर करे हमें क्या लगे। और ये देख के क्या वो मुसलमान, और जिसने मुझे भेजी, आप सोचें आजकल कितना फास्ट है, कितनों को वो मैसेज आते होंगे, पहले ऐसी मुसीबतें बना के फिर उसको फेसबुक पे प्रमोट करते हैं, फिर लोगों को मैसेजों में भेजते हैं हमसे ये खरीदो, क्या हम इस पे एक्शन नहीं ले सकते। हम बैठे हम कह रहे हैं बस हम तो नहीं पहन रहे ना इस ओके, कैसे मकर हैं। और ये चीजें आज बुरी मुझे लग रही हैं, आपको लग रही हैं, कुछ अरसे बाद हम कहेंगे इट्स ओके इट्स नेचुरल। ये तो बेवकूफ लोग जिस्म छुपाते हैं, क्योंकि वो मूसा की तरह कोई आया भी होगा ना जिस्म नहीं दिखाना लोगों को, क्या हमारा खून नहीं खोलता। वो कहते हैं कि तुम हम मेरे साथ मकर करते थे, हम तुम्हें देख के अंधे बहरे बने थे, और कोई एक तो खरीदेगा ही ना उस 4 लाख के जोड़े को। कोई दुल्हन ड्रेस नहीं था, पार्टी ड्रेस था, सिर्फ वजह के कोई डिजाइनर का रजिस्टर्ड ड्रेस है। और रजिस्टर्ड को आपको पता है क्या मतलब होता है, एक ही बनेगा, वो खुद भी नहीं दूसरा बनाएगा, बना के खत्म, दैट्स इट। आप अकेली हैं जो महफिल में वो पहनेंगी, पूरे यकीन से पहन के जाइए कि कोई आप जैसा नहीं लगेगा। ये बुत नहीं है, ये नफ्स का बुत नहीं है। देखिए पढ़ा लिखा बंदा फैशन करता है ना, वो पढ़े लिखे वाला करता है, अनपढ़ और जाहिल लोग जब फैशन प्रमोट करते हैं वो इस किस्म के फैशन बना के, और भी वो कहते हैं, वो कहते हैं ना कबा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। यकीन करें मैं तो शुक्र अल्लाह के देखती नहीं हूँ ऐसी चीजें, लेकिन ऐसी चीजें मुझे शायद अल्लाह ही दिखा देता है कि मेरा भी तो ईमान ना मुर्दा हो जाए। खुद देखें अपनी बेटियों को, बहुओं को, खुद को देखें क्या पहनते हैं, किधर जाते हैं। ये मकर के जाल है जो हमारी नस्लों पे। ये तो मैंने अपने मुल्क की रोना रो दिया ना, आप इन मुल्कों में जाए वो तो इसका भी तकल्लुफ नहीं करते। वो कहते हैं नेचुरल ड्रेस, इट्स ओके, कपड़े वो पहनते हैं जिनका दिल गंदा होता है। हम बहुत क्लीन हार्टेड हैं, हम बहुत सॉफ्ट हैं। आप किसी मॉल में जाके देखें, नजरें नहीं उठती, बाप भाई के साथ आप जा ही नहीं सकती, इतनी शर्म आएगी आपको वहां गंदी चीजें देखकर। और हम कहते हैं कुछ भी तो नहीं है दुनिया में, सब ठीक है, वेरी नाइस, दे लुक वेरी नाइस, फाइन, बहुत स्माइली है। किस गंदगी में हमारे बच्चे रोज सुबह उठ के जाते हैं और रात को वापस आते हैं, कोई एक छींटा तो उनपे भी पड़ सकता है ना। अल्लाह सबको बचा के रखे। इस तामरूनना, जब तुम हमें हुक्म देते थे, अब नोट कीजिएगा, तुम हुक्म देते थे हमको किसका, अनकफुर बिल्ला, कि हम अल्लाह का कुफर करें, वनजअल लहू अंदादन, और हम उसके मद्दे मुकाबिल ठहराएं, वसरु नदामता, और वो छुपाएंगे शर्मिंदगी को, नदामत को, लम्मरा वल अजाब, जब अजाब को देखेंगे। ये हुक्म कब देते थे भाई? कभी आपने किसी जगह दुनिया में सुना, कोई भी जगह, के लोग बैठे हों, जैसे मैं इस वक्त बैठ के आपको ये बात सिखा रही हूं, कोई बैठे और जाके कि अल्लाह के बंदो अल्लाह का कुफर करो, कभी आपने सुना? ये चर्च में ये कभी कोई देता होगा? सैनिगॉग में कोई देता होगा? मंदिर में कोई देता होगा? नहीं देता। ये हुक्म लोग देते हैं अपने अमल के मैदान में, जुबान हाल से, जुबान काल से, कि लोगो ये कर लो, वो कर लो, और अल्लाह का कुफर ही तो है कि उसके हुक्मों को छोड़ो। यानी जितनी बंदे के अंदर, मैं कहती हूं कि अगर ईमान की गैरत होना तो ऐसी चीजों पे तो दिल करता है कि स्क्रीन तोड़ दो, इतनी हया नहीं रही तुम लोगों में, और गलत चीजों को लेके बैठे और अल्लाह के शरीक बनाओ। शरीक के कुछ नहीं होता जी, पर्दा कुछ नहीं। जिन्होंने स्काफ छोड़ा, उन्होंने ये साथ कहा था कि बस स्काफ छोड़ दो, बाकी फुल कवर्ड रखो। निकाब छोड़ा का स्काफ पहन लो, स्काफ छोड़ा का कपड़े तो पूरे पहनो। अब दिन ब दिन ये जो और गंदगियां आ रही हैं, और कल आपको इसके ऊपर वो सर पे स्काफ भी पहन के दिखा देंगे कि खूबसूरत बहुत लगती है लोग, चलो बरहना जिस्म के ऊपर स्काफ पहनो। आप सोचिए किस गंदगी में हम बैठे हुए हैं। कितनी जरूरत है इस किताब को सीखने की, इस दीन को आम करने की। अपनी नस्लों में ईमान डाल जाइए। ठीक है आप उनको जबरदस्ती चला तो नहीं सकते, लेकिन कभी याद तो करेंगे ना कि हमारी अम्मा ये खपती थी या हमारे अब्बा ने ये बताया था। इससे बड़ा अल्लाह का मद्दे मुकाबिल और कौन बनेगा कि जो शैतान के सिलसिले को आम कर दे। आज वो खुश हैं, वाह हम जैसा कौन, कल शर्मिंदगी से गर्दनें झुकी होंगी। वजअलना लगला लफिया ना किल्लजीना कफरू, और हमने तोक डाल दी इन काफरों की गर्दनों में, अब वहां रस्सियां लगेंगी इनको। दुनिया में छुटे फिरते थे ना खुले शुतर बेमुहार, कोई उम्र आज आ जाए, मैं कहती हूँ आज एक मर्द मोमिन मिल जाए, आज मुसलमान हुक्मरानों में इतनी गैरत आ जाए, ऐसी चीजों पर पाबंदी नहीं लग सकती। और पाबंदी कौन लगाए? जो खुद उस चीजों को पसंद ना करे। जब आवाम की अक्सरियत जाहिल और इन गंदी चीजों को, फिल्मों को देखकर अपने हाल हुलिये बनाने वाली, वो पाबंदी पे वो सारे उस हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। फिर बात वही है कि मुआशरे की रूट में कुरान डाल दो। पौधे को अगर गजा देनी हो ना, तो उसके पत्तों पे हम खाद नहीं डालते, उसकी टहनियों के ऊपर वाइटामिन नहीं डालते, उसकी जड़ों में डालते हैं। आज कुरान का इल्म है ना, ये दरख्तों में, पत्तों में है। थोड़े थोड़े चंद लोग सोसाइटी के, या आफिस साहब, या आलम साहब, या फला, ये शहर में चंद लोग कुरान पढ़ने आ रहे, कोई फायदा नहीं होगा। कुछ तो होगा लेकिन वो नहीं होगा जो होना है। उस दिन होगा जिस दिन सोसाइटी की रूट्स के अंदर कुरान का पानी, पानी की तरह कर दो। हर घर में कुरान, हर जगह, क्लासों में, टेलीफोनों पे, फेसबुक पे। की तो मुझे फेसबुक के नाम पे, मैंने कहा आप लोगों ने अभी तक उस पर क्लास क्यों नहीं शुरू की? नहीं करते, मैं नहीं करती, मुझे भी नहीं आती, बस ऐसे ही कभी कोई अपनी क्लासेस का लिंक हो तो उसको कोई दिखा देता। तो मैंने कहा आप लोग इसके ऊपर करें, आप इस गंदगी के, इसमें कितना कम्युनिकेशन है, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, आप सबको पता है। तो चलो आप इसमें 15 मिनट की रोज की शेयरिंग कर दो। ये व्हाट्सएप माशाल्लाह इतनी कामयाब क्लासेस चल रही हैं, मैंने कहा आप इसी की फाइल रोज की एक उधर डाल के कोई फेसबुक क्लासेस शुरू कर दो, जो मुमकिन है करो, ताकि उन लोगों तक किताब पहुंचे जहां तक नहीं पहुंची। कल किसी का बहुत ही अच्छा फीडबैक आया हुआ था व्हाट्सएप क्लासेस, किसी ने सुनाई। लेकिन याद रखिए अपना हिस्सा डालें, गंदगी को दूर नहीं करेंगे तो वॉशरे के अंदर जरासीम उठेंगे और वो सब फिर हमारे ही अंदर जाएंगे और हम ही बीमार होंगे। हल युजन कानू या मलुन, इनको बदला नहीं मिलेगा मगर उसी का जो वो अमल करते थे। अल्लाह से अति नहीं करता, अल्लाह ताला किसी को जबरदस्ती नहीं पकड़ता। तुम जो करोगे वही मिलेगा, इसलिए तुम इसकी फिक्र करते हुए अपने आप को बचा लो और जो अल्लाह ने तुम्हें कहा है उसके पीछे चलो। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें अमल की तौफीक दे और بس غیرت کی وجہ سے آواز جو اونچی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ معاف کرے. لیکن حقیقت ہے کہ خلاف شرع چیزوں کو دیکھ کر غصے کا نہ آنا یہ بھی ایمان کا ذوق ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.